मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 22 जनवरी 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 41 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं रंजना यादव अरैया उत्तर प्रदेश, औरैया उत्तर प्रदेश, संजीव कुमार आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, रवि यादव टेब विश्वान सीतापुर उत्तर प्रदेश, सौरभ यादव ते विश्वान सीतापुर उत्तर प्रदेश, सनौल मुस्तफा नबी करीम पहाड़गंज दिल्ली, प्रीति अर्चना तिर्की राउरकेला उड़ीसा, प्रिय दर्शनी तिर्की राउरकेला उड़ीसा से, अजय कुमार कुमरौल दरभंगा बिहार से, रोनित कुमार बलिया उत्तर प्रदेश से, मनदीप कुमार कोतरा कैथल हरियाणा से, पवन यादव पटना बिहार से, शिलेंद्र कुमार यादव फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद जावद लखनऊ उत्तर प्रदेश से, गोविंद कुमार वाल्मीकि नगर बिहार से, नरेंद्र सिंह मीना जयपुर राजस्थान से, आकाश साहू शमशाबाद विदिशा मध्य प्रदेश से, मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, किरण कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, कैशराम चौहान पाली राजस्थान से, शंकर दुबे सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, रोहित कुमार पद्मपुर बिहार से, सुरेश कुमार जौनपुर उत्तर प्रदेश से, नूतन गुप्ता जगदलपुर छत्तीसगढ़ से, कुंदन कुमार दिल्ली से, रजनी शुक्ला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, राजू कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, सोनल सहारे नागपुर महाराष्ट्र से, कुमार गौरव मुंगेर बिहार से, आयुष सिंह हमजाबाद सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, सुमेर बारे खंडवा मध्य प्रदेश से, कमलेश कुमार यादव जौनपुर उत्तर प्रदेश से, श्रीराम कुमार डाल्टनगंज पलामू झारखंड से, अजीत मिश्रा रीवा मध्य प्रदेश से, प्रशांत सोनी सलीमानबाद मध्य प्रदेश से, अर्जुन नई दिल्ली से, कुलदीप सिंह चुरू राजस्थान से, शैलेंद्र शर्मा वृंदावन उत्तर प्रदेश से, सोनू कुमार पांडे सरेया बिहार से, शैलेंद्र कुमार ठाकुर दुर्ग छत्तीसगढ़ से, प्रेम मनोहर समस्तीपुर बिहार से, अजीत कुमार आरा बिहार से और पंकज कुमार सतना मध्य प्रदेश से। तो रंजना, संजीव, रवि, सौरभ, सनौल, प्रीति अर्चना, प्रियदर्शनी, अजय, रोनित, मनदीप, पवन, शैलेंद्र, मोहम्मद, गोविंद, नरेंद्र, आकाश, मुकेश, किरण, कैशराम, शंकर, रोहित, सुरेश, नूतन, कुंदन, रजनी, राजू, सोनल, कुमार गौरव, आयुष, सुमेर, कमलेश, श्रीराम, अजीत, प्रशांत, अर्जुन, कुलदीप, शैलेंद्र, सोनू, शैलेंद्र, प्रेम, अजीत और पंकज, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इस स्वागत के साथ ही मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको भी जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं और साथ ही साथ उनके अभिभावकों को भी। और यह मेरा धन्यवाद और आभार मित्रों सच पूछिए तो आप लोगों के उस विश्वास के प्रति है, आप लोगों की उस आस्था के प्रति है जो आप सबने एकेडमी के प्रति व्यक्त किए हैं। मित्रों, आप लोगों की इस आस्था और आप लोगों की इस विश्वास की रक्षा करने के लिए एकेडमी हर संभव कोशिश कर रही है, करती रहेगी। और मैं आपको एकेडमी की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि जो उम्मीदें आप लोग लेकर यहां आएंगे, निश्चित रूप से एकेडमी को उन उम्मीदों पर खरा पाएंगे। अब ये बात अलग है कि आप लोगों की उम्मीदें कितनी व्यावहारिक हैं और आप हमारा कितना साथ दे रहे हैं। आप जितना ज्यादा हमारा साथ देंगे, डेफिनेटली हम लोग आपके लिए उतना अधिक कर पाएंगे। मित्रों, एक इसी के साथ ही छोटी सी सूचना है, और सूचना यह है कि जैसा कि मैंने कहा था, 20 तारीख तक डिस्काउंटेड सीट्स अवेलेबल थी। इसका मतलब यह नहीं कि सीट्स खत्म हो गई हैं और रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है, बिल्कुल भी नहीं। रजिस्ट्रेशन ओपन है, सीट्स अभी अवेलेबल हैं, आप अभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बस फर्क केवल इतना है कि जो सीट डिस्काउंटेड थी वो खत्म हो चुकी हैं, अब आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अदरवाइज सीट्स अवेलेबल हैं। तो खासकर मैंने ये सूचना इसलिए दी है कि कुछ मेल से मुझे ऐसा आभास हुआ है कि शायद उनको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि इसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मित्रों, फिर से दोहराना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। मित्रों, अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर, और आज मुख्य विषय के तहत हम लोग हितों के टकराव पर बात करेंगे, राइट। पहले हम थोड़ी सी दो छोटी छोटी खबरों को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो पहली खबर थी वो हितों के टकराव से ही संबंधित थी, उसके बारे में मैं मुख्य विषय के तहत बात करूंगा। दूसरी जो छोटी सी खबर है वो है मित्रों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत, ओम प्रकाश रावत मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं, जो कल अपने पद की शपथ लेंगे, पद अपना ग्रहण करेंगे। दोस्तों, ये जो हमारा चुनाव आयोग है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। मैं यहां दो बातें आपसे कहने के लिए खासकर मैंने इस विषय को चुना है। एक तो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो ओपी रावत साहब हैं, ये बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हैं, और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूं जिनको ओपी रावत जी का स्नेह मिला है, और भरपूर स्नेह मिला है, और मैं इनके बहुत बड़े प्रशंसक में हूं। इतना सरल सहज व्यक्ति, इतना सरल सहज ब्यूरोक्रेट्स, इतना ईमानदार, इतना कमिटेड अपने काम के प्रति, बहुत लोग कम लोग देखने में मिलते हैं। अद्भुत प्राणी है, अद्भुत व्यक्ति है। प्राणी मैंने इसलिए कहा कि जैसे जो भी मुझे लगता है कि जिनमें भी जीवन है, शायद वो एक व्यापक क्षेत्र हो जाता है प्राणी कहने से। मुझे लगता है मित्रों कि सच में अगर हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स इस तरीके के हो जाए, सब अपने अपने ढंग से कर रहे हैं, सच पूछिए तो हर कोई ऐसा हो भी नहीं सकता, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स मेरे कहने का मतलब सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स से नहीं है, पूरे के पूरे नौकरशाही से है, तो इस देश का कायाकल्प होते बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मैंने महसूस किया है कि किस तरह से सरकार की जो छोटी छोटी योजनाएं भी होती थी उनको ये कितने बड़े रूप में तब्दील कर देते थे, केवल अपने विजन से, अपने एक्शन से। और यहां तक कि जिसके बारे में सरकार की कोई योजना नहीं है, उन योजना वहां भी वो जाकर के उन समस्याओं के निराकरण में वो अपनी तरफ से कुछ इमेजिन करके, और एक नई, ऐसा लगता था जैसे कि इन्होंने योजना शुरू कर दी, हालांकि उस योजना का सरकार से कोई संबंध नहीं होता था, न उसके लिए सरकार कोई फंड देती थी, उन्हीं लोगों से वो योजना बनवा करके और उन्हीं पर लागू कर देते थे, और उसके बहुत ही अद्भुत परिणाम प्राप्त होते थे। और मैं जब यहां सिविल सर्विस की क्लासेस किया करता था भोपाल में, तो ये मेरा सौभाग्य रहा है कि वो आकर के स्टूडेंट्स को एड्रेस भी करते थे। तो डेफिनेटली मित्रों, मैं आप सब की ओर से और एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, अपनी पत्नी प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उन्हें इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और शुभकामनाएं भी प्रेषित करना चाहूंगा। और सच पूछे तो ये विशेषकर मेरे लिए गर्व की बात है कि ये कहना मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे उनका स्नेह मिला है। मित्रों, जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, आप कुछ समय से देख रहे हैं कि चुनाव आयोग पर भी कुछ न कुछ आरोप लगाए जाने लगे हैं। ईवीएम जो मशीन होती है उसकी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। फिर अभी आप देख रहे हैं कि जो 20 एमएलए को जो दिल्ली के थे विधानसभा के, उनको डिस्क्वालीफाई करने के मामले में भी उस पर आरोप लगाया गया। तो आप थोड़ा सा इन चीजों, इन बातों पर ध्यान रखिएगा, इन पर निगाह रखिएगा कि किस तरीके से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाई जा रही है और वो कितनी सही है कितनी गलत है, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। इन सब पर आप थोड़ा थोड़ा विचार करते रहिए, और जब भी आपको कहीं कुछ पढ़ने सुनने को मिलता है तो डेफिनेटली आपको चाहिए कि आप उसे नोट कर लें। मित्रों, अब आज का मुख्य विषय है हितों का टकराव। मैंने इस विषय को क्यों चुना है, डेफिनेटली करंट अफेयर्स में चुनने का जो मूल कारण है वो यही है कि जो दिल्ली विधानसभा के जो 20 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, विधानसभा सदस्य थे, उनको पहले चुनाव आयोग ने डिस्क्वालीफाई किया और इसके बाद राष्ट्रपति जी ने भी चुनाव आयोग के इस निर्णय को अपनी स्वीकृति दे दी। और जो डिस्क्वालीफाई किया है उसके पीछे रीजन जो है वो ये कि जो एमएलए थे, इन्हें इनमें से 20 एमएलए को, जो टोटल उनके एमएलए हैं, उनमें से 20 को उन्होंने संसदीय सचिव बना दिया था, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया था, और बाद में फिर एक एडवोकेट जो दिल्ली के ही थे उन्होंने ये राष्ट्रपति जी को ये पत्र लिखा कि ये जो संसदीय सचिव का जो पद है ये लाभ का पद है और संविधान में ये लिखा, मतलब वो जो हमारा जनप्रतिनिधित्व कानून है उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी एमएलए एमपी लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता। अब ये लाभ का पद है उन्होंने कहा, है ना, उस पर अब सुनवाई हुई और उसको लाभ का पद मानते हुए उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। न्यूज में आपने सुना होगा कि ये लाभ का पद कैसे है, जो दिल्ली की सरकार है, आप पार्टी के 20 एमएलए जो है वो आप पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि वो सैलरी नहीं लेते थे संसदीय सचिव के रूप में, कोई उनको दूसरी सुविधा नहीं दी गई थी, तो वो फिर क्या लाभ ले रहे थे। चुनाव आयोग का जो कहना है, इसे आप विशेष कर ध्यान दीजिएगा, कि जो लाभ होता है वो केवल आर्थिक नहीं होता है कि धन और सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, यानी कि वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मूल बात यह है कि अगर वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो विधायिका के हिस्से हैं और विधायिका के हिस्से होते हुए वो व्यवस्थापिका कार्यपालिका का काम कर रहे हैं, व्यवस्थापिका का काम कर रहे हैं। कार्यपालिका का मतलब हो गया प्रशासन। अब प्रशासन का भी काम आप ही कर रहे हैं, कानून भी आप ही बना रहे हैं, तो इसको उन्होंने एक तरीके से हितों का टकराव की बात कही। हितों का टकराव, या यूं कह लीजिए कि उसका एक दोहरा लाभ वो ले सकते हैं, लिया नहीं लिया क्या हो सकता है वो बात की बात है, लेकिन वहां संभावनाएं मौजूद है। तो मित्रों, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, और अभी इस पर आर्टिकल्स भी आएंगे, मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, आप भी अपने ढंग से सतर्क रहिएगा। मैं आपको एक यहां पर स्पेशली एक बात बताना चाहूंगा कि जो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सिविल सर्विस में इस तरह के प्रश्नों के पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि यह केवल राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित नहीं है, ये कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी से भी संबंधित होती है। सन 2015 की मेंस में, मेंस के फोर्थ पेपर में, जनरल स्टडीज के फोर्थ पेपर में इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था, और अगर आप लंबे समय से अपेक्षाकृत थोड़ी तैयारी कर रहे हो तो आपको ध्यान होगा कि उस समय जो बीसीसीआई के चेयरमैन हुआ करते थे, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो प्रमुख हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको इसी आधार पर पद से हटने की सलाह दी थी कि वहां हितों का संघर्ष है, हितों का टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और उसी को आधार बना करके 2015 के मेंस के फोर्थ पेपर में, जो आपके एप्टीट्यूड का पेपर है, उसमें प्रश्न पूछा गया। अब वो यहां हम पॉलिटिकल फील्ड में उसे ही देख रहे हैं। मैं आपको फ्रेंड्स, आपकी सुविधा के लिए प्रश्न पढ़कर सुना देता हूं। प्रश्न पूछा गया है, ये 10 नंबर का प्रश्न है, 150 शब्दों में आपको लिखना है, और ध्यान से सुनिएगा तब आप इस प्रश्न को समझ पाएंगे और सटीक उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि शब्द केवल 150 हैं आपके पास। लोक सेवकों के समक्ष, पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवकों के समक्ष हित संघर्ष, ब्रैकेट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मुद्दों का आ जाना संभव होता है। आप हित संघर्ष पद से क्या समझते हैं और यह लोक सेवकों के द्वारा निर्णयन में किस प्रकार अभिव्यक्त होता है? यदि आपके सामने हित संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाए तो आप उसका हल किस प्रकार निकालेंगे, उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। 150 शब्द। मैं मित्रों इंग्लिश में पढ़ देता हूं। पब्लिक सर्वेंट्स आर लाइकली टू कन्फ्रंट विद द इश्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड हाउ डज इट मैनिफेस्ट इन द डिसीजन मेकिंग बाय पब्लिक सर्वेंट। इफ फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन, हाउ वुड यू रिजॉल्व इट? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। मित्रों ये प्रश्न है, इस पर हम लोग डिटेल में कभी बातें करेंगे क्योंकि आज वक्त नहीं है कि इस पर मैं बात कर सकूं, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बिल्कुल आपको एकदम अधूरा ही छोड़ रहा हूं बात को, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बहुत अच्छा आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जो वरुण गांधी जी द्वारा लिखा गया है, हिंदी में यह आर्टिकल है, दैनिक जागरण में छपा है, यह आर्टिकल आप पढ़िएगा। तो जिन बातों को मैं यहां कहता, इनफैक्ट यूं कह लीजिए कि वह आर्टिकल में वे बातें कही जा चुकी हैं, और साथ ही मैं आपको एक बात और एक और सजेशन देना चाहूंगा, और वो ये कि अगर आपको कहीं भी वरुण गांधी जी का लिखा हुआ लेख मिल जाए तो आप उसे जरूर पढ़िए, क्योंकि वरुण गांधी अच्छा लिखते हैं, तथ्यात्मक रूप में अपनी बात कहते हैं, और मैंने देखा है कि वो एक कुछ नया आइडिया भी दे देते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी। तो मित्रों अब मैं इस मुख्य विषय को यहीं खत्म करूंगा। जो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स हैं वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। अब मैं आता हूं ईमेल पर। तो मित्रों सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा अपने दो मित्रों को, आप सब की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी। वे दो मित्र हैं, पहले हैं धनंजय राय वाराणसी से, इन्होंने अभी यूपीपीएससी का जो प्री एग्जाम हुआ है उसे क्वालिफाई किया है। धनंजय हमारे 7th बैच के स्टूडेंट रहे हैं, और जो दूसरे जो स्टूडेंट हैं वो हैं विभा मिश्रा, वो गोंडा उत्तर प्रदेश से हैं, वो हमारी 3rd बैच की स्टूडेंट रही हैं। तो धनंजय और विभा दोनों ने अभी यूपीपीएससी का जो प्री एग्जाम हुआ है उसको क्वालिफाई किया है, और धनंजय और विभा आप दोनों को मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत इस सफलता के लिए बधाई देता हूं। और आप मेंस और इंटरव्यू को भी बहुत अच्छे अंकों से क्वालिफाई करें, इसके लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं, साथ ही ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं। और मित्रों सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हीं में से कुछ नौजवान साथियों के नाम हैं, शिवम तिवारी दिल्ली से, दिव्यांशु ओमार हरदोई उत्तर प्रदेश से, राजा अग्रवाल न्यू दिल्ली से, दीपक जैन मंडला मध्य प्रदेश से, पांड्या सुरेश थाराड गुजरात से, श्वेता राज, सूरज राजपूत शाहदा महाराष्ट्र से, आशीष पटेल रीवा मध्य प्रदेश से, पवन कुमार ब्रह्मपुर बिहार से, ज्योति उत्तराखंड से, कल्पना हाथरस यूपी से, इमरान खान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से और मानवेंद्र नई दिल्ली से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।